हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 4। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए आध्यात्मिक धरातल तक पहुंचना है, और जिसका केवल एक मार्ग साधन है कि हमें गुरु और गौरंग की कृपा प्राप्त हो, तो उसके लिए कृपा की याचना करेंगे हृदय की समस्त मलिनता का परित्याग करके, और बुद्धि से समस्त भौतिक विचारों को निकालकर केवल कृष्ण की कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथपीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानो सूति देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। परम सौभाग्य है श्रीमद् भगवद गीता, जिसका श्रवण करने से सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। केवल श्रवण जब हम करते हैं तो सारे तीर्थों का पुण्य मिलता है। अब तीर्थों में हम क्यों जाते हैं? तीर्थों में इसलिए जाते हैं ना कि हम पवित्र हों। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का खाली पठन करने से ही, वराह पुराण में भगवान वेदव्यास जी कहते हैं गीतायां पुस्तकम यत्र, गीतायां पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते, जहाँ पर खाली श्रीमद् भगवत गीता, गीतायाम यानी गीता का पुस्तक मतलब शास्त्र, यत्र यत्र मतलब जिधर, वो जगह जिधर श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई होती है, यत्र पाठ प्रवर्तते, और वहां पर जहाँ रोजाना श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होता है, तत्र सर्वाणि तीर्थानि, तत्र मतलब वो जगह पर, कौन सी जगह पर, जहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता है और उनका पाठ होता है, तत्र सर्वाणि तीर्थानि, सारे तीर्थ प्रयागानि तत्र वै, प्रयाग प्लस प्रयाग को कहा जाता है तीर्थों का राजा, तो वहां पर स्वयं प्रयागराज भी होते हैं। अब जहाँ पर राजा होती है तो उसका मतलब होता है कि उसकी सारी प्रजा भी, यानी कि जितने भी तीर्थ हैं वो वहां पर, यानी जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का पुस्तक होता है, जहाँ पर उसका पाठ होता है, वहाँ सभी तीर्थ आकर उपस्थित हो जाते हैं। तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागानि तत्र वै। तो वास्तव में भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अथवा श्रवण करके सभी तीर्थों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और इन तीर्थों में जाकर क्या लाभ प्राप्त होता है, इन तीर्थों में जाकर तो हम पवित्र होते हैं ना, पवित्र। असल में भगवान कहते हैं तीर्थों से आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, तीर्थों में जाने से आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, तीर्थों में जाने से आप पवित्र होते हो, और पवित्र होने के बाद जब आप मेरे नाम का जप करते हो तब वास्तव में कृष्ण प्राप्ति का केवल एक ही साधन है, क्या, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही एकमात्र साधन है इस कलयुग में कृष्ण प्राप्ति का, सिद्धि का, और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का। इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, भगवान के पवित्र नामों के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है, है ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और कोई साधन, ऐसा ब्रह्मा जी भी कहते हैं, बोलते हैं सर्व नात्र नात्र परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यति, नारद इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। तो नारद जी ने कहा आप शास्त्र में देख के बताओ, हो सकता है कोई दूसरी किताब में कोई दूसरा तरीका लिखा हो भगवान के, भगवान को प्राप्त करने का। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नात्र परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यति, मैंने सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, ऐसे थोड़ी ना तुम्हें बता रहा हूँ, सारे शास्त्र पढ़ने के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण के अतिरिक्त, भगवान के नाम का जप करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है भगवान को प्राप्त करने का, अपने जीवन को जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का, जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने का, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हमारा हृदय क्योंकि पवित्र नहीं है ना, तो और भगवान का नाम पवित्र है बहुत, तो उसमें टिकता नहीं है, अपवित्र जगह पर पवित्र नाम नहीं दिखता। मैं इसलिए जब हम मंगलाचरण करते तो मैं कैसे बोलती हूँ कि हृदय की समस्त मलिनता का परित्याग करो। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि हृदय की मलिनता ऐसी है क्या, क्या हमको ये ना साबुन या डिटर्जेंट या स्कॉच लेकर आए और हृदय की मलिनता को साफ करें फिर मंगलाचरण करें, ऐसे कैसे करें, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो कोई तरीका हो ना, जिस तरह हर चीज को साफ करने का एक अलग तरीका होता है, कार वॉश करने का अलग तरीका होता है, घर वॉश करने का अलग तरीका होता है, कपड़े वॉश करने का अलग तरीका होता है, और बर्तन वॉश करने का अलग, अभी उसी तरह से हृदय को पवित्र करने का भी एक अलग तरीका होता है। क्योंकि जब हृदय पवित्र होएगा तभी हम भगवान के नाम का स्मरण, वास्तव में नाम का स्मरण करने से ही भगवान प्राप्त होंगे, लेकिन उससे पहले हृदय पवित्र होगा तभी हम शुद्ध नाम का उच्चारण करेंगे। तो फिर हृदय कैसे पवित्र होगा और हृदय के अंदर जो मलिनता है वो क्या है, मलिनता क्या है, संसार की आसक्ति। हमारे हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त जिस चीज के लिए आसक्ति है, चाहे वो संसार में कितनी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, वह आसक्ति हमारे हृदय की मलिनता है, क्योंकि हम क्योंकि आत्मा है और आत्मा का संबंध केवल कृष्ण से है, केवल परमात्मा से, और यदि आत्मा अपने परमात्मा के अतिरिक्त किसी और से कोई भी संबंध स्थापित करती है तो वो उसकी मलिनता है, उसकी अज्ञानता है। तो जब तक यह मलिनता खत्म नहीं होती है, बहुत दुख की बात है कि हमारा जीवन, ये मनुष्य जीवन स्पेशली मिला है, भगवान श्री कृष्ण ने स्पेशली भजन करने के लिए दिया। यह मनुष्य जीवन का डिजाइन भगवान ने ऐसा बनाया है ताकि इस शरीर में मनुष्य भगवान का अच्छी तरह से भजन कर सके। ये ऐसे भगवान ने बनाया, इसलिए ऐसे शास्त्र कहता है, करो च यत्तत् कर्म करो मनुष्य च, यानी कि करो कहते हैं हाथों को, करो च यत्तत् कर्म करो, यानी कि ये हाथ भगवान ने ऐसे बनाए हैं ताकि इस हाथ को भगवान के सामने जोड़ सकें, भगवान के प्रसन्न करने के कार्य कर सकें और भगवान की माला कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और तरमाला करते करते एक एक बीट को हम आगे लेके जाएं। भगवान ने बनाया डिजाइन ही ऐसा है हाथों का कि उससे भगवान के लिए प्रसाद बनाएं, भगवान की सेवा करें, भगवान का श्रृंगार करें और भगवान के नाम का जप करने के लिए बीट माला है ना वो करें। और आगे है श्रुणोति तत् पुण्य कथा सकरणम, यानी कि ये करण भगवान ने, ये कान के डिजाइन भगवान ने ऐसा बनाया है ताकि इस कान से भगवान की कथा सुन सके। वास्तव में भक्तों, अगर हम भगवान की कथा श्रवण करते ना, फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कथा जब श्रवण करेंगे तो भगवान के चरणों में हमारा मन डायरेक्ट से लगेगा। इसे भगवान श्री कृष्ण ने दो कान दिए, बोला ये दो कान तुमको दिए, देखो जुबान एक दी है ना, बोले जुबान एक ही सही है, एक से ही कम बात करो, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ज्यादा क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसे भगवान ने दो कान दिए कि ज्यादा से ज्यादा आप श्रवण करो, भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो फिर हमारा कल्याण होगा, तो फिर हम भगवान से प्रेम कर सकेंगे। और उसके बाद है स्मृति विशंतम स्थिर जंगमेशु, यानी भगवान ने यह मन स्मरण शक्ति जिससे है वो इसे बनाई है। अब मन अगर नहीं हो, समझो भगवान ने मन नहीं बनाया हो, तो फिर हम भगवान की लीलाओं का स्मरण कैसे करें? कि वास्तव में भगवान ने ये हृदय दिया है कि तुम इसमें मुझे बिठाओ और मेरे विषय में सोचो, मेरी लीलाओं का स्मरण करो। इसे देखो भगवान कितने करुणामयी हैं, उनको आने की क्या आवश्यकता संसार में, ऐसा पूछते हैं। जब सोने आदि 88,000 ऋषि बैठे होते हैं तो सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि भगवान आते क्यों है संसार में, मतलब भगवान है, बोलते हैं 10.9 में, मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते है जगत विपरी वर्तते, कि अर्जुन ये जो जगत है वो मेरे आंख के इशारे से चलता है। अब वो उधर गोलोक वृंदावन धाम में बैठे बैठे क्या इन कंस इत्यादि पापियों का नाश नहीं कर सकते थे क्या? वैसे तो सबको सारा मतलब मरते रहते सब, तो उनको भी मार सकते थे वहीं पर वहीं से। यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता है संसार में, भगवान आते हैं खामखा, ये संसार इतना अच्छा भी नहीं है, भगवान के रहने की थोड़े ना जगह है, भगवान को तो गोलोक वृंदावन धाम में रहना चाहिए, फिर आते क्यों है? ये तो हमें पता है कि भगवान जो है, अब धर्म की स्थापना ये तो देखो हम भगवद गीता में पढ़ते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानेर्भवति भाव, और है ना अभ्युत्थान परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम्, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान कहते हैं मैं प्रतियुग में आता हूँ। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न क्लियर नहीं होता है कि भगवान को आने की क्या जरूरत है, क्या उधर से बैठे बैठे साधुओं की रक्षा नहीं कर सकते, साधुओं के अंदर इतना पावर नहीं दे सकते कि वो अपनी रक्षा करें, और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान उधर से इशारा कर दे, मर जाएंगे ना सारे, खाली यमदूत को बोले या रामराज को बोले मारो जाके उनको, तो फौरन से मार लेंगे। भगवान को उन असुरों को मारने के लिए या साधुओं की रक्षा करने के लिए संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। तो 88,000 जो ऋषि मुनि है वो पूछते हैं सूत गोस्वामी से, आते क्यों है भगवान। बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम चैप्टर 1 कैंटो 1 चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 12 यानी पहला सिकंद पहला अध्याय श्लोक नंबर 12। सूत गोस्वामी से पूछते हैं सोनिक ऋषि, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सूत जानासि भद्रम ते, हे सूत गोस्वामी आप, आपका बहुत कल्याण हो क्योंकि आप जो है वो हमें बताने के लिए आए हो यहाँ पर, कृपा है कृष्ण की। जब साधु का संत, साधु संत का जब संग होता है ना, तो समझो भगवान अब हृदय से चाहते हैं आपके ऊपर कृपा करना। तो जब सूत गोस्वामी आए 88,000 ऋषियों के सामने, बोला आपके हम समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर कृष्ण की असीम कृपा हुई है और हम चाहते हैं आपका भी मंगल हो। क्योंकि अब मंगल कब होता है, मंगल वो ट्यूसडे वाला नहीं, मंगल मतलब आपके लिए शुभ होता है ना, कब होता है, जब आप भगवान की कथा श्रवण करते हो। वही केवल श्रवण करना, केवल भगवान के विषय में सुनना आपके लिए मंगलकारी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप श्रवण करते हो ना, फिर आप हृदय से प्रेम करने लगते हो। उसके बाद जब प्रेम स्टार्ट होता है तब आप अच्छे अच्छे से नाम जप करते हो। यानी कि स्टार्ट कहाँ से होता है, इसीलिए नवदा भक्ति में जब नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं ना भागवतम में, तो क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आसनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम सबसे पहली विधि क्या है, श्रवण करना। तो मंगल किससे होगा हमारा, शुभ किससे होगा हमारा, हित किससे होगा, जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे। तो अब उनको सूत गोस्वामी से बोला, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति, आपका कल्याण हो। अब वो तो सुनाएंगे ना, सुनेंगे तो 88,000 ऋषि। तो बोला हमारा तो कल्याण होने ही वाला है, हो ही गया आपके दर्शन करके, और अभी आप श्रवण कराओगे तो होगा, लेकिन जो भगवान की कथा का वर्णन करता है उसका कितना कल्याण होगा। तो क्योंकि आप अभी हमारे सामने भगवान की कथा का वर्णन करने वाले हो, इसीलिए भद्रम ते बोला आपका भी कल्याण होने वाला है भगवान सात्वताम पति। अब बता रहे हैं कि भगवान जो शुद्ध भक्तों के रक्षक है, उन्होंने देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। चिकीर्षया का मतलब होता है कि यस्य यस्य चिकीर्षया, यानी कि वो कौन सी उनकी कामना थी, वो कौन सी चीज प्राप्त करना चाहते थे इस संसार में, वो कौन सी चीज थी जो वहां उसको गोलोक वृंदावन धाम में बैठे बैठे नहीं कर सकते थे, उनको आना क्यों पड़ा। तो वास्तव में भक्तों, भगवान के आने का एक मुख्य कारण होता है, ये जो कारण है ना, धर्म की रक्षा करना, परित्राण साधु नाम विनाश है, ये भगवान उधर बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान क्योंकि भक्त वत्सल हैं, करुणा के सागर हैं, तो भगवान इस संसार में आते हैं लीला करने के लिए, कि यहाँ पर आके मैं कुछ ऐसी लीलाएं करूंगा जो बाद में जब मैं संसार में नहीं होऊंगा, वापस से गोलोक वृंदावन धाम में चला जाऊंगा, तो जो दूसरे लोग हैं जो संसार में आकर परेशान हो गए हैं संसार के दुखों की वजह से, सारी जिंदगी कष्ट उठाते रहते हैं, वो जब मेरी लीलाओं का श्रवण करेंगे, मेरी लीलाओं के विषय में जब सुनेंगे, अब आएंगे नहीं तो लीलाएं नहीं होंगी, और जब लीलाएं नहीं होंगी तो भक्त सुनेंगे क्या। तो इसलिए भगवान इसी आते हैं हमारे ऊपर करुणा करने के लिए, कि यहाँ पर संसार में आएंगे और ऐसी ऐसी लीलाएं करेंगे, फिर बाद में जब भक्त उनका वर्णन करेंगे तो सबका कल्याण होगा, तभी उनके प्रेम उनके हृदय में, तभी हम पढ़ रहे ना नेति विशंतम स्थिर जंगमेशु, के भगवान ने मन इससे बनाया है कि इससे, इस मन के जरिए से हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करें। अब भगवान ने देखो कितनी कृपा कर दी हमें, मन भी दे दिया और फिर सोचने के लिए लीलाएं भी दे दी कि भाई आप, लेकिन हमारी कितनी बदकिस्मती है, कितना दुर्भाग्य है कि उस मन से भगवान की लीलाओं को स्मरण करने की बजाय भौतिक गंदगी को स्मरण करते हैं। ये भौतिक है ना, गंदगी होती है जो हमारे हृदय में आ जाती है, जो हमें भगवान से दूर कर देती है, भगवान का स्मरण करने से रोकती है, तो फिर ये हमारे हमारे अपराध होते हैं। तो हम अब इनसे बचना है हमें, और इस गंदगी को कैसे दूर करेंगे? शास्त्र कहता है मलिनं मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् कीटामृत स्नानं संसार मलनाशनं। मलिनम मोचनम पुंसाम, मलिनम मतलब गंदगी को, मोचनम मतलब साफ कर देता है, पुंसाम मतलब मनुष्य। मनुष्य अपने शरीर की गंदगी को साफ करता है। कैसे साफ करता है? हम अपने हमारे शरीर जो है वो गंदा होता है, हम कैसे साफ करते हैं? जल स्नानम दिने दिने, उसको रोजाना स्नान करता है। दिने दिने, देखो वर्ड इस्तेमाल किया है वेदव्यास जी, कहते हैं जल स्नानम दिने दिने। एक दिन आप स्नान करके हमेशा के लिए पवित्र नहीं हो सकते। एक दिन स्नान करोगे तो फिर शास्त्र जो कहता है रोजाना दो दफा करना चाहिए, एक मंगला आरती से पहले और एक संध्या आरती से पहले स्नान करना चाहिए, ताकि भगवान की सेवा के योग्य हो सके। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या लिखा है, मलिनम मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। आपको अपने शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए डेली स्नान करना पड़ेगा, रोज रोज स्नान करना पड़ेगा। लेकिन आगे कहा सकृत कीटामृत स्नानम संसार मलनाशनम। सकृत गीतामृत स्नानम, और यदि आप गीता के अमृत का स्नान कर देते हो एक बार, सिर्फ एक बार भी भगवद गीता के अमृत से स्नान करते हो, संसार मलनाशनम, तो आपके हृदय के अंदर जो संसार की मलिनता है, जो कृष्ण को, कृष्ण के नाम को ग्रहण करने में, कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करने में बाधा बनती है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन को सक्सेस नहीं कर पा रहे हो, वो क्या होगा? सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। जब आप श्रीमद् भगवद गीता के अमृत से स्नान करोगे तो आपके हृदय की संपूर्ण मलिनता, संसार मलनाशनम, जो कि आपके हृदय में घर करके बैठी हुई है, वो नाश हो जाएगी। यानी जैसे यदि अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए जल में स्नान करना पड़ता है तभी हम पवित्र होते हैं, उसी तरह मन बुद्धि और अपनी आत्मा को संसार की गंदगी से पवित्र करना हो तो हमें भगवद गीता रूपी अमृत से स्नान करना पड़ेगा, तभी व्यक्ति अंदर और बाहर से पवित्र हो सकता है। तो पवित्र करने वाली, सभी तीर्थों को प्रकट करने वाली इस श्रीमद् भगवद गीता का हम श्रवण कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 4। तीसरे श्लोक में बताया था दुर्योधन अपने गुरु महाराज के पास गया था, द्रोणाचार्य के पास, और उनसे कहा कि आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने इस सेना को बहुत ही अच्छे तरीके से सेटिंग किया है, व्यूह रचना बहुत अच्छी की है, और उस सेना में है कौन, यानी कि पांडवों की सेना का पहले वर्णन कर रहे हैं ना, कि पांडव, वो ऐसे बताया था ना, राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और पांडवों की सेना के विषय में वर्णन करने गए। अब वो क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 4 में उस सेना का वर्णन कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या है, उस सेना में क्या है। दुर्योधन कह रहे हैं, ये वास्तव में श्लोक किसका है, संजय का है, लेकिन बोल तो दुर्योधन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। एक बार फिर, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदस्य महारथः। फिर से मेरे साथ साथ आप बुक में देखकर जो शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता उसमें देखकर मेरे साथ साथ श्लोक को पढ़ो। आप पढ़ोगे नहीं तो आपको शब्द उच्चारण करना नहीं आएंगे। मेरे साथ साथ पढ़ो। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। यहाँ तो कहाँ? क्योंकि दुर्योधन पांडवों की सेना के विषय में वर्णन कर रहा है ना, तो अपने गुरु को बोल रहा है अत्र यानी इस सेना में। कौन सी सेना में? पांडवों की सेना में, जिसकी व्यूह रचना किसने की है? दृष्टद्युम्न ने। तो बोला इस शूरा, इस सेना में। शूरा मतलब बहुत बहुत वीर हैं। महेश्वासा, महेश्वासा मतलब महान धनुर्धर भी हैं, यानी कि बहुत बहुत वीर हैं, उसमें महान धनुर्धन है। और कैसे हैं? भीमा अर्जुन, जैसा भीम है ना, भीम के बारे में कहा जाता है इसके अंदर 100 हाथियों का बल है, और अर्जुन के विषय में कहा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा धनुषधारी है। तो यहाँ पर दुर्योधन अपने गुरु को बता रहे हैं कि तुम खाली ये नहीं समझना कि दृष्टद्युम्न है सारे आगे और कोई नहीं है आपको टक्कर मारने वाला, बाकी वहां पर और भी बहुत बहुत सारे वीर हैं, जैसे महान धनुर्धर हैं, भीमा अर्जुन समायुधि, समा मतलब के समान, युद्ध मतलब युद्ध में, और सारे जो महान वीर है ना वो सब ऐसे ही नहीं है, ऐसे हल्के फुल्के वीर नहीं है, वो सब भीम और अर्जुन के समान युद्ध में निपुण हैं। और उनके नाम गिनाते हुए कहते हैं युयुधान यानी युयुधान, विराट विराट राजा, च यानी भी, और द्रुपद द्रुपद खुद भी, और च महारथन, ये सब महारथी हैं, यानी कि जो मैं आपको अभी नाम बता रहा हूँ। अभी देखो इस श्लोक में दुर्योधन जो है वो पांडवों के सेनाओं के कुछ महान सेनापतियों के नाम बता रहा है, और आगे भी 2-3 श्लोक में वही बताएगा, और कुछ उसके बाद अपनी सेनाओं के विषय में बताएगा। तो ये सब क्यों बता रहा है? ये भूमिका है, हमें पता होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता जब स्टार्ट हो रही थी उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देना अनिवार्य हो गया। अब अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहता था, कभी भी आराम से बैठकर घर पे उसको श्रीमद् भागवतम सुना सकता, श्रीमद् भगवद गीता सुना सकता था ना, बेटो आज मैं तुम्हें गीता सुनाता हूँ, लेकिन उस टाइम पर नहीं सुनाया। ये सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पर दोनों सेनाओं में बहुत सारे वीर हैं, और आज वीरों के विषय में बता रहे हैं कौन कौन से वीर हैं। दुर्योधन कह रहे हैं इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद हैं। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बालक बाधक नहीं था, यानी कि दृष्टद्युम्न के बारे में पहले बताया ना दुर्योधन ने कि तुम्हारा जो शिष्य है उसने इतना अच्छा सारी सेना को व्यूह रचना की है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लेकिन शिष्य चाहे कितना ही ज्यादा सामर्थ्य उसका क्यों ना बढ़ जाए, वो अपने गुरु के लिए कभी भी बाधा नहीं बन सकता। गुरु आखिर गुरु होता है और शिष्य आखिर शिष्य होता है, तो दृष्टद्युम्न क्योंकि द्रोणाचार्य का ही शिष्य था तो उसके लिए कोई बड़ी बाधक नहीं थी, उसके लिए कोई ये कोई बड़ी टेंशन नहीं थी। लेकिन किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोले इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे दूसरे ऐसे भी योद्धा थे जो उनके शिष्य नहीं थे तो उनसे भय था। आगे बताते हैं, दुर्योधन उन्हें विजय पथ पर अत्यंत बाधक बताता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जयी था। दुर्जयी मतलब जिनको विजयी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल। तो दुर्योधन बता रहा था कि खाली दृष्टद्युम्न ही नहीं है, और भी बहुत सारे बाधक हैं जो कि अर्जुन और भीम के टाइप के ना योद्धा हैं, बहुत ज्यादा विशाल उनके पास बल है। तो वो सब हमारे युद्ध ऐसा ना समझना, ये सब अपने गुरु को बोल रहा है, आप ऐसा नहीं समझना कि उस तरफ इतनी थोड़ी सेना है तो हम लोग को जीत लेंगे, मैंने आराम से जीत जाएंगे। लेकिन वहां का एक एक महारथी जो है वो भीम और अर्जुन के समान है, तो वो सब ऐसे हैं कि उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है, यानी कि दूसरों को ऐसे बताते ना, कंपेयर करके बताना, इसकी शक्ति भी इसके जितनी है। तो क्योंकि द्रोणाचार्य भी जानता था कि भीम और अर्जुन बहुत महान योद्धा है, तो उन्हीं के साथ कंपेयर करते हुए दुर्योधन बता रहे हैं, भीमा अर्जुन समायुधी, जो कि भीम और अर्जुन के समान युद्ध में एकदम निपुण थे। आगे के श्लोक में भी दुर्योधन जो है वो कुछ सैनिकों के, इसी तरह के योद्धाओं के नाम इंगित करता है, हम पढ़ेंगे। दुर्योधन कह रहा है चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 5, वास्तव में ये श्लोक संजय का है, संजय बता रहा है, लेकिन दुर्योधन अपने गुरु को कह रहा है, दृष्ट के तुष्चीकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। फिर से, दृष्ट के तुष्चीकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। फिर से, दृष्ट के तुष्चीकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। शब्दों का अर्थ देखिए, दृष्ट केतु, ये दृष्ट केतु नाम है एक योद्धा का, सेकितान ये भी उनका नाम है, काशीराज काशी के राजा वो भी एक महान योद्धा है, च काशीराजश्च वीर्यवान, वीर्यवान का मतलब होता है बहुत शक्तिशाली। अब पहले तो बताया कि दृष्टद्युम्न के अतिरिक्त भी इस उस साइड पे बहुत सारे महारथी हैं जो कि अर्जुन और भीम के बराबर है। अब यहाँ पर उनके नाम बता रहे हैं, कौन कौन से हैं, दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, और ये सब अत्यंत ही शक्तिशाली हैं, वीर्यवान हैं। और आगे बताया, पुरुजित कुंतीभोज तथा शैव्य तथा नरपुंगवा, मतलब मानव समाज में वीर, बहुत ज्यादा वीर हैं। यानी बता रहे हैं, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन ने कहा उनके इनके साथ ही दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। कहां पर हैं? पांडवों की सेना में। यानी दुर्योधन बता रहा है कि पांडवों की सेना में भले कम है, मतलब इतनी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो जो भी वहां के सेना उस सेना के महारथी हैं वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं जितने कि भीम और अर्जुन हैं। तो उनके नाम भी गिनाए कि ये सारे हैं, कौन कौन से हैं, दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और शैव्य जैसे शक्तिशाली हैं। आगे दुर्योधन कहते हैं चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 6, ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन ने कहा अपने गुरु को, युधामन्युष्य विक्रांत ಉತ್ತಮೌಜಾಶ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೀಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾರಥಾಃ. ಫಿಫ್ಸಿ ಯುಧಾಮನ್ಯುಶ್ಚ ವಿಕ್ರಾಂತ ಉತ್ತಮೌಜಾಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೀಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾರಥಾಃ. ಫಿರ್ ಸೆ ಯುಧಾಮನ್ಯುಶ್ಚ ವಿಕ್ರಾಂತ ಉತ್ತಮೌಜಾಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೀಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾರಥಾಃ. ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಭೀ ದುರ್ಯೋಧನ್ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಉಸ್ ಸೇನಾ ಕೆ ಯಾನಿ ಪಾಂಡವೋ ಕಿ ಸೇನಾ ಕೆ ಕುಛ ವೀರೋ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಬತಾ ರಹೇ ಹೈ. ಯುದ್ಧಾಮನ್ಯು ಈ ಯುದ್ಧಾಮನ್ಯು ಥೆ ಔರ್ ಚ ಮತಲಬ್ ಭೀ ವಿಕ್ರಾಂತ, ವಿಕ್ರಾಂತ ಯಾನಿ ಯುದ್ಧಾಮನ್ಯು ಹೈ ವೋ ಭೀ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಹೈ, ವೋ ಭೀ ಕೋಈ ಆಮ್ ಮಹಾರಥಿ ನಹೀ ಹೈ. ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಉತ್ತಮೌಜಾ, ಏಕ್ ಉತ್ತಮೌಜಾ ನಾಮ್ ಕೆ ಮಹಾರಥಿ ಹೈ, ವೋ ಭೀ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೈ. ಔರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಹೀ ಸುಂದರ ವೀರ್ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯಾ ದುರ್ಯೋಧನ್ ನೆ ಸೌಭದ್ರೋ. ಸೌಭದ್ರೋ ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಭದ್ರಾ ಕಾ ಪುತ್ರ ಕೌನ್ ಥಾ, ಪಹಲೆ ತೋ ಯೆ ಬತಾಯೆ ಸುಭದ್ರಾ ಕೌನ್ ಥಿ. ಸುಭದ್ರಾ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಬಹನ್ ಥಿ, ಬಹುತ್ ಹಿ ಚಹೀತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಭದ್ರಾ ರಾಣಿ ಥಿ. ಔರ್ ಉನ್ಕಾ ವಿವಾಹ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಕರವಾಯಾ ಥಾ. ಔರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಇನ್ಕಾ ವಿವಾಹ ಹುವಾ ಥಾ. ಔರ್ ಉನ್ಕಿ ಏಕ್ ಸಂತಾನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುಯಿ ಥಿ, ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ್ ಥಾ ಅಭಿಮನ್ಯು. ಔರ್ ಆಪ್ಕೋ ಪತಾ ಹೈ ಇಸ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾ ಏಕ್ ಪುತ್ರ ಥಾ. ಕೌನ್ ಥಾ? ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷತ್, ಜಿನ್ಕಿ ಕೃಪಾ ಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆ ಹಮ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಹಮೇ ಮಿಲಾ ಹೈ. ತೋ ಉಸ್ ಸುಭದ್ರಾ ಕೆ ಪುತ್ರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ದುರ್ಯೋಧನ್ ಬತಾ ರಹೇ ಹೈ ಸೌಭದ್ರೋ. ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕ್ಯೂಂಕಿ अब है ना पांडवों की, जैसे पांडवों की एक पत्नी थी इनका नाम था द्रौपदी, और अर्जुन की एक पत्नी अलग से थी उनका नाम था सुभद्रा. तो इनके अपने बेटे यानी कि जो पांडवों के बच्चे हैं, सुभद्रा का एक बेटा और द्रौपदी के पांच बेटे, बोला ये सर्व एव महारथा. सर्व मतलब ये सब, एव मतलब निश्चय ही, ये सब डेफिनेटली महारथा, बहुत ज्यादा महान रथी हैं, बहुत ज्यादा पावर है इनके पास, बहुत ज्यादा शक्ति है. एक एक योद्धा अर्जुन और भीम पर भारी पड़ने वाला, इतने मतलब उनके जितना बल है इनके अंदर. तो अनुवाद पढ़िए, पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं. यानी कि अपने गुरु को बता रहा है कि आप ऐसा नहीं समझना कि उस सेना में सारे कमजोर हैं या फिर हम हरा नहीं सकेंगे, हमारी सेना बड़ी है. क्योंकि अब दुर्योधन राजा था ना, तो सेना मतलब युद्ध शुरू होने से पहले अपने सेनापति को सूचित कर रहा था कि उस युद्ध में आपको किस किस के साथ लड़ना है और उनके पास कितना कितना बल है. तो आज हमने पांडवों की सेना के विषय में पढ़ा और कल कौरवों की सेना के विषय में पढ़ेंगे. और है ना, आपसे एक प्रार्थना है कि जब आप श्लोक श्रवण करो ना, तो आप अपने हाथ में श्रीमद् भगवद गीता पकड़ो. श्रीमद् भगवद गीता को वो जो ये आधा घंटा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता के लिए होना. आज तक बहुत क्लासेस सुनी, बहुत लेक्चर अटेंड किए, लेकिन कभी आप ये नहीं कह सकते कि हमने श्रीमद् भगवद गीता पूरी अच्छे तरीके से पढ़ ली. आज भी हम किसी से पूछते हैं, भाई गीता पढ़ी? बोला हाँ पढ़ी है, बट समझ में इतना आया नहीं, कहीं से छूटी कहीं से पढ़ी. लेकिन अब आपको एक एक शब्द, एक एक श्लोक को अच्छे तरीके से पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है. और जब हम 18 अध्याय कंप्लीट कर लेंगे ना इस तरह से, तो आप फखर से कह सकोगे, गर्व होना चाहिए कि हम एक एक शब्द को, एक एक संस्कृत के श्लोक के एक एक वर्ड को पढ़ते हैं और हर चीज को समझने का प्रयास करते हैं, तो इसको आप लाइट मत लो। ऐसा नहीं कि आप खाना खा रहे हो उस टाइम पर चला दिया और ना, या फिर आप कोई बर्तन मांज रहे हो या किचन में कार्य कर रहे हो तो उस टाइम पर आपने सुन लिया, ऐसे नहीं। आपको देखो, संसार की भी जब आपको कोई एजुकेशन, कोई क्लास अटेंड करने आप जाते हो तो आपको टीचर कभी भी ये अलाउ नहीं करती है कि आप उस टाइम पर कोई और कार्य भी करो। चलो ठीक है, आप मोबाइल पे थोड़ा है ना किसी से चैटिंग करनी है तो वो भी कर लो, आप है ना कोई और कर लो। तो अगर आप सिलाई सीखने जाते हो तो आपको ऐसे बोलेगी कि ठीक है आप दूसरे दूसरे कार्य भले कर सकते हो, साथ में मैं आपको जो लेक्चर दे रही हूँ वो भी सुन लो। नहीं, आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। तो इतनी साधारण सी भौतिक चीजों के लिए भी हम लोगों को बाकी कार्य छोड़कर उसी पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो हम तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले, तो हमें है ना ऐसे नहीं श्रवण करना चाहिए। इससे श्रीमद् भगवद गीता का अपमान होता है। हमें श्रीमद् भगवद गीता को कंप्लीट समय देना चाहिए। ये हमारे जीवन का सबसे उत्तम कार्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा। हरि बोल।